डॉक्टर क्रेग कीनर मैथ्यू व्याख्यान 9 मत्ती 6:1-18 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 9 मैथ्यू 7-8 है। मैथ्यू अध्याय 6 श्लोक 1-18 तक। यीशु आपके धार्मिकता के कार्यों को केवल भगवान के देखने के लिए करने की बात करते हैं, दूसरों के देखने के लिए नहीं, दूसरों के आपका सम्मान करने के लिए नहीं। और वह दान, प्रार्थना और उपवास का उदाहरण देते हैं। और उपवास की चर्चा के बीच में वह भी शामिल करता है जिसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। अब यह ल्यूक के सुसमाचार में एक अलग स्थान पर दिखाई देता है, लेकिन याद रखें मैथ्यू चीजों को शीर्ष पर व्यवस्थित करना पसंद करता है। बेशक यीशु ने प्रार्थना को 1 से अधिक बार थोड़े अलग रूपों में सिखाया होगा, लेकिन किसी भी मामले में इस बिंदु पर हमारे पास प्रभु की प्रार्थना है और इसमें समानताएं हैं, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कद्दीश के साथ। इसलिए यीशु ने उस प्रकार की प्रार्थना को अपनाया जिससे उसके शिष्य पहले से ही परिचित थे। ऐसे लोगों के पास पहले से ही कई अच्छे सिद्धांत थे जो धर्म ग्रंथ में डूबे हुए थे और भगवान की बातों की परवाह करते थे। और इतने सारे लोगों ने नियमित रूप से कदीश की पेशकश की और इसकी शुरुआत कुछ इस तरह हुई, उनके महान नाम को ऊंचा और पवित्र माना जाए, उसका राज्य शीघ्र और शीघ्र आए। स्वर्ग में हमारे पिता यहूदी प्रार्थनाओं में ईश्वर को यहूदी लोगों के पिता के रूप में स्वीकार करना बहुत आम बात थी। कभी कभी ग्रीक साहित्य में भी मुख्य ईश्वर को विश्व का पिता, विश्व का रचयिता बताया गया है। यीशु के लिए ईश्वर उसके लोगों का पिता है। हमारे पिता का क्या मतलब है? खैर, अलग अलग संदर्भों से आने पर हम इसे कुछ अलग ढंग से समझ सकते हैं। यह यहूदी प्रार्थनाओं में नियमित रूप से दिखाई देता है, क्योंकि प्राचीन यहूदी संस्कृति में एक पिता आमतौर पर वह व्यक्ति होता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे प्यार करेगा और आपका भरण पोषण करेगा, जो आपको अनुशासित करेगा, लेकिन केवल प्यार में। खैर, आज कुछ लोगों की पृष्ठभूमि अलग है। मेरा मतलब है, अगर किसी को उसके पिता या किसी चीज द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, तो वे हमारे पिता के बारे में चीजों को रखने का इतना सुखद तरीका नहीं सोच सकते हैं। इसलिए हमारे लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब हम यह प्रार्थना करते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, यह कहने का प्रयास करें, ठीक है, यह उस प्रकार का पिता है जिसके बारे में बात हो रही है। यह निर्भरता की अभिव्यक्ति है, जैसे वह इस प्रार्थना से पहले कहता है कि आप जानते हैं बुतपरस्त वे इस सभी शब्दावली के साथ प्रार्थना करते हैं, देवताओं को उन्हें हेरफेर करने के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पिता हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें क्या चाहिए। इसी तरह अध्याय 7 में श्लोक 7-11 तक। यदि आप कुछ अच्छा मांगते हैं तो आपका पिता आपको पत्थर या कुछ बुरा नहीं देगा। तुम्हारे पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं। तो यह निर्भरता की प्रार्थना है। यह किसी ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना है जो एक बच्चे की तरह बन जाता है, एक बच्चे की तरह राज्य प्राप्त करता है, कोई भगवान पर निर्भर हो जाता है। यहूदी प्रार्थनाएं अक्सर हमारे पिता के बारे में बात करती थीं, लेकिन शायद ही कभी मेरे पिता के बारे में बात करती थीं, जैसा कि यीशु अक्सर बोलते हैं। फिर भी उन्होंने अब्बा शब्द का प्रयोग शायद ही कभी किया होगा। आप इसे मार्क 14:36 में पाते हैं और फिर आप पाते हैं कि प्रारंभिक ईसाई अक्सर यीशु के उदाहरण का अनुसरण करते हैं। गलातियों 4 में, रोमियों 8 में आत्मा हमारे दिलों में आती है जिससे हम अब्बा पिता चिल्लाते हैं, क्योंकि हम भी बच्चे हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु के कारण परमेश्वर का। और इसलिए कुछ लोगों ने तर्क दिया है, ठीक है, यह इतना दुर्लभ नहीं था, क्योंकि हमारे पास यहूदी लोगों के कुछ उदाहरण हैं जो भगवान को अब्बा के रूप में संदर्भित करते हैं। लेकिन हमारे पास जो उदाहरण हैं, वे सदियों बाद के हैं। सभी उदाहरण एक ही अवसर का उल्लेख करते हैं, एक दृष्टांत एक रब्बी द्वारा सुनाया जा रहा है, और यह प्रार्थना नहीं है, यह भगवान की तुलना अब्बा से कर रहा है, और इसका श्रेय हमेशा एक ही रब्बी को दिया जाता है। तो स्पष्ट रूप से यह एक दुर्लभ चीज थी, प्रार्थना में भगवान को अब्बा के रूप में संबोधित करने का विचार। अब्बा, आप जानते हैं, ये सिर्फ छोटे बच्चे नहीं हैं। बड़े लोग ऐसा कर सकते थे, लेकिन यह सम्मान की उपाधि थी, लेकिन यह आत्मीयता की भी उपाधि थी, अत्यधिक स्नेह की उपाधि भी थी। और यीशु ने इसे अपने पिता के साथ अपने रिश्ते पर लागू किया है और हमें भी यह सिखाया है। अब निश्चित रूप से प्रभु की प्रार्थना में यह केवल पिता कहता है, जैसा कि हमारे पास अंग्रेजी में है, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु ने हमें और अधिक अंतरंग तरीके से भी सिखाया है कि जब हम पिता के बारे में बात करते हैं तो यह अंतरंगता का मामला है। और सुसमाचार में हम यीशु के बारे में जो प्रमुख विशेषताएं देखते हैं उनमें से एक है पिता के साथ उनकी घनिष्ठता, और यह हमारे लिए एक उदाहरण स्थापित करता है, ईश्वर पर घनिष्ठ रूप से भरोसा करना। मैथ्यू में ल्यूक के संस्करण के विपरीत मैथ्यू में आपके पास याचिकाओं के दो सेट हैं। आपके पास आपकी याचिकाएं हैं और आपके पास हम की याचिकाएं हैं। अब आप बहुत सशक्त हैं। ग्रीक में आप या आपका हर बार वाक्यांश के अंत में प्रकट होता है और यह दोहराव इसे बहुत सशक्त बनाता है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हम पहले राज्य की तलाश करते हैं, यहां तक कि प्रार्थना में भी, और भरोसा करते हैं कि ये सभी चीजें हमारे साथ जुड़ जाएंगी। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम न केवल अपने लिए चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया में भगवान के बड़े एजेंडे के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान को दुनिया की जरूरतों की परवाह है। भगवान उन लोगों की परवाह करते हैं जो विभिन्न स्थानों पर पीड़ित हैं। ईश्वर अपने सम्मान की परवाह करता है, क्योंकि लोगों को इसी की सबसे अधिक आवश्यकता है। वह चीज जो लोगों के जीवन को सबसे अधिक बदल सकती है वह है प्रभु को जानना। इसलिए हम उन चीजों के आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अंतः कद्दीश की तरह हम परमेश्वर के राज्य के पूर्ण रूप से आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे लिए राज्य अभी तक नहीं आया है, लेकिन हम अभी भी भविष्य के राज्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अभी तक राज्य का हिस्सा नहीं है। हमारी याचिकाओं में कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि वे भविष्य उन्मुख हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आमतौर पर प्राचीन काल में अन्य प्रकार की प्रार्थनाओं की तरह ये शायद अब हमारी वर्तमान जरूरतों के लिए अधिक उन्मुख हैं। हम याचना करते हैं कि हमें रोटी दें, हमारे पापों को क्षमा करें और हमें परीक्षण में न ले जाएं, बल्कि हमें बचाएं। लेकिन ये हमारी कॉरपोरेट प्रार्थनाएं भी हैं। इसलिए यह न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी चिंता का विषय है। अपने लिए प्रार्थना करने में भी कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उन अन्य बातों पर भी जोर देने की कोशिश कर रहा हूं जो हमारे यहां हैं। भगवान के नाम को पवित्र करने का क्या मतलब है? भविष्यवक्ता अक्सर अंत समय में भगवान के नाम को पवित्र करने, प्रतिष्ठित करने या पवित्र करने के बारे में बात करते थे। उदाहरण के लिए यहेजकेल 36 में राष्ट्रों को पता चल जाएगा कि मैं प्रभु हूँ, सर्वोच्च प्रभु की घोषणा है, जब मैं उनके सामने आपके माध्यम से खुद को पवित्र दिखाऊंगा। यह भविष्य के लिए प्रार्थना है, लेकिन यह ऐसी चीज भी है जिसके साथ हमें अभी भी लगातार रहना चाहिए। कद्दीश की तरह यह भविष्य के लिए है, लेकिन यदि आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको भी उस मूल्य के साथ लगातार जीना चाहिए। मुझे परमेश्वर के नाम के पवित्रीकरण की परवाह है। खैर, फिर मैं ऐसे तरीके से जीना चाहता हूँ जिससे भगवान का नाम पवित्र हो। जॉर्ज फुट मूर मुख्य रूप से रब्बी साहित्य की बात कर रहे थे, लेकिन लगभग एक सदी पहले उन्होंने यहूदी नैतिकता के सबसे बुनियादी सिद्धांत के रूप में भगवान के नाम की पवित्रता कद्दीश हाशेम की बात की थी। वास्तव में यह इतना महत्वपूर्ण था कि भगवान के नाम को पवित्र किया जाए और भगवान के नाम को अपवित्र किया जाना इतना नृशंस था कि कुछ रब्बियों ने यहाँ तक कहा, यदि आपको पाप ही करना है तो आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते, अपने आप को एक गैर यहूदी के रूप में छिपाएं और चले जाएं, किसी ऐसे स्थान पर जाओ जहां तुम्हें कोई न जानता हो और वहां पाप करो, इस प्रकार तुम परमेश्वर के नाम पर कलंक न लगाओगे। खैर, वे वस्तुतः यह नहीं कह रहे थे कि आपको ऐसा करना चाहिए। यह कहने का एक ग्राफिक तरीका था, चाहे कुछ भी हो, भगवान के नाम को अपवित्र न करें। सुनिश्चित करें कि भगवान का नाम पवित्र है। परमेश्वर के राज्य के आने का क्या अर्थ है? जैसा कि हमने पहले कहा, यहूदी लोगों ने माना कि ईश्वर वर्तमान में शासन करता है, लेकिन उन्होंने एक विशेष अर्थ में उसके शासनकाल या उसके राज्य की भी तलाश की। जब ईश्वर बिना किसी चुनौती के शासन करेगा, तो ईश्वर सार्वभौमिक रूप से न्याय और शांति स्थापित करेगा और अपने लोगों को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाएगा। भगवान अब अक्सर काम करते हैं। हम जानते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं जिनकी भगवान को परवाह है, और इसलिए हम न्याय और शांति और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां तक हो सके इन चीजों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन हम मानते हैं कि राज्य अभी तक अस्तित्व में नहीं है। हम अभी इसके लिए काम करते हैं, लेकिन अंततः भगवान स्वयं राजा के आगमन के साथ इसे पूरा करेंगे। आशय, खैर, हमें भी स्वर्ग की तरह अब पृथ्वी पर भी उसकी इच्छा के लिए काम करना चाहिए। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उन चीजों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जैसे वे स्वर्ग में हैं, कि भगवान लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे। यह प्रार्थना उन लोगों के लिए नहीं है जो इस उम्र से संतुष्ट हैं। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो कहते हैं, ओह, मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ, मैं बस संतुष्ट हूँ। यह एक प्रार्थना है जो उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि दुनिया अभी भी सही नहीं है और हम एक आने वाली दुनिया की तलाश में हैं। और साथ ही इसका सुसमाचार के प्रसार पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 24:14 में अंत आने से पहले राज्य की खुशखबरी सभी राष्ट्रों तक पहुंचनी चाहिए। और 2819 और 2820 भी उसी के बारे में बात करते हैं। इस दिन हमें हमारी रोजी रोटी देने के संबंध में बहस चल रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि यह भविष्य के वादे के बारे में बात कर रहा है। क्या यह कल की रोटी या आज की रोटी के बारे में बात हो रही है? विशेष शब्दांकन हमारे लिए अपरिचित है। हमारे पास वह शब्द कहीं और प्रमाणित नहीं है। खैर, हमें वर्तमान में रोटी चाहिए, और इसलिए यह संभवतः भविष्य के गूढ़ मन्ना के बारे में बात नहीं कर रहा है, हालांकि इसका भी वादा किया गया है। लेकिन संभवतः आप जानते हैं, प्राचीन काल में रोटी के लिए प्रार्थना करने वाले अधिकांश लोग प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, कृपया मेरी जरूरतों को पूरा करें। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसा आपके पास नीति वचन 30:8 में है, मुझे आज के लिए आवश्यक मात्रा में रोटी दो। हमारी दैनिक रोटी क्या है? यह अनुमान लगाया गया है कि भूमध्य सागरीय दुनिया में 70-90% लोग ग्रामीण किसान थे, उनमें से कई अन्य लोगों की संपत्ति पर काम करते थे, लेकिन उनमें से कुछ के पास खुद जमीन के छोटे टुकड़े थे। वे अक्सर देवताओं से प्रार्थना करते थे क्योंकि वे जानते थे कि बारिश, फसल और इसी तरह की अन्य चीजें लाने के लिए वे खुद पर निर्भर नहीं रह सकते। इसराइल दैनिक रोटी के लिए भगवान पर सबसे अधिक निर्भर कब था? जाहिर है, जब वे जंगल में थे तो वे खेती नहीं कर सकते थे, वे अपनी रोटी खुद नहीं उगा सकते थे। और जैसे भगवान ने जंगल में अपने लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, वैसे ही हम भरोसा कर सकते हैं कि भगवान अब हमारी दैनिक रोटी प्रदान करेंगे। मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है जब मुझे हमेशा यह नहीं पता होता था कि मेरा अगला भोजन कहाँ से आएगा। लेकिन आम तौर पर अब आप जानते हैं, मुझे बहुत अधिक भोजन उपलब्ध है और कुछ अन्य याचिकाएं मुझ पर अधिक जोर से प्रहार करती हैं। लेकिन हम अभी भी जानते हैं कि हमारे कई भाइयों और बहनों को दैनिक रोटी की जरूरत है और हम सभी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और हमें हमेशा उस पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या हो सकता है। मत्ती 4 में यीशु अपनी रोटी के लिए अपने स्वर्गीय पिता पर निर्भर था और उसने हमारे लिए इसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया। हमें इस याचिका से बहुत अधिक आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब वह दूसरों के ऋणों को माफ करने की बात करते हैं, तो भगवान हमारे ऋणों को माफ कर दें जैसे हम उन लोगों को माफ कर देते हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ पाप किया है। किसानों को अक्सर अपने खेतों में बुआई के लिए अनाज खरीदने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते थे। कुछ गैर यहूदी साहूकार 50% तक ब्याज लेते थे। अब यह एक चरम उदाहरण और एक दुर्लभ उदाहरण है। लेकिन गैर यहूदी साहूकार अक्सर बहुत अधिक ब्याज वसूलते थे। यहूदी साहूकारों को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें साथी यहूदियों से ब्याज नहीं लेना चाहिए था। तो क्या होता है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा उधार दे रहे हैं जिसे अपने खेतों में बुआई के लिए अनाज खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है? यदि उनकी फसल खराब हो जाए और वे भुगतान न कर सकें तो क्या होगा? या जब सातवां वर्ष अर्थात जुबली वर्ष निकट आता है, जब सब कर्ज माफ किए जाते हैं, तब क्या होता है? आपको अपना पैसा वापस नहीं मिलता। इसलिए साहूकारों, जिनके पास दूसरों को उधार देने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त धन था, ने उधार देना बंद कर दिया क्योंकि यह आर्थिक रूप से उनके हित में नहीं था, ऐसा कहा जा सकता है। यही कारण है कि जब मैं सम्मेलनों में जाता हूँ तो कुछ अन्य लोगों के विपरीत मैं अपनी किताबें बेचने के लिए अपने साथ नहीं ले जाता क्योंकि मैं हमेशा उन्हें लागत पर बेचता हूँ, कोई लाभ नहीं कमाता। और फिर अगर किसी ने मुझे भुगतान नहीं किया तो मैंने पैसे खो दिए। हालांकि उन्हें इससे बचने का एक रास्ता मिल गया। यहूदी शिक्षकों ने कहा, आह, हमारे पास इससे बचने का एक तरीका है जिसे संभव कहा जाता है। आप मंदिर को पैसा दीजिए। मंदिर किसानों को धन उधार देता है। किसानों को मंदिर को चुकाना होगा और मंदिर साहूकार को चुकाएगा। और इसलिए यह कानून की शर्तों से बचने का एक तरीका था, लेकिन इससे वास्तव में कानून की भावना को मदद मिली क्योंकि इस तरह से कम लोगों को वह पैसा मिल सकता था जिसकी उन्हें जरूरत थी। हमें माफ कर दो। पुनः श्लोक 12। हमारे ऋणों को क्षमा करो। खैर, वह एक सामान्य प्रार्थना थी जो यहूदी लोग करते थे। उन्होंने क्षमा की अपनी आवश्यकता को पहचाना। उनके पास शेमोना नामक एक प्रार्थना थी, एसरेई 18 आशीर्वाद। यह 18 आशीर्वादों में से छठा आशीर्वाद था। हमें माफ कर दो। वहां यह दूसरों को माफ करने पर आधारित नहीं था, लेकिन वह अवधारणा ज्ञात थी। सिराज की पुस्तक में सिराज 28 में अपने पड़ोसी द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करें और तब जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। यीशु आगे कहते हैं, प्रार्थना करने के लिए हमें परीक्षा में न ले जाएं, बल्कि हमें उस दुष्ट से बचाएं। इसका क्या मतलब है? हमें परीक्षण में मत ले जाओ। क्या इसका मतलब यह है कि हे भगवान, कृपया ऐसी व्यवस्था करें कि हमारी कभी परीक्षा न हो? कृपया हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करें कि हमारे विश्वास की परीक्षा लेने वाले कठिन समय कभी न आए। ठीक है, आप प्रार्थना कर सकते हैं कि उसे मांगने में कोई हानि न हो, लेकिन ऐसा होने की बहुत अधिक संभावना नहीं है। याद रखें, मैथ्यू अध्याय 4 में यीशु परीक्षण से गुजरा और वह विजयी हुआ और उसने हमारे लिए एक उदाहरण स्थापित किया। लेकिन मैथ्यू के सुसमाचार के पूरे संदर्भ को याद करें। 26:41 यीशु ने अपने चेलों से कहा, गेत्समैन में सो गए हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। पहाड़ी पर परीक्षण पहले से ही चल रहा था, परीक्षण आ रहा था। मुद्दा परीक्षण से बचने का नहीं था, बात परीक्षा पास करने की थी, और संभवतः यही मुद्दा है। यहूदी प्रार्थनाओं में कभी कभी इस भाषा का प्रयोग इसी तरह किया जाता था। एक यहूदी शाम की प्रार्थना है जो समान तरीके से एक समान वाक्यांश का उपयोग करती है, और यह यहूदी शाम की प्रार्थना इस प्रकार है, मेरे पैरों को पाप की शक्ति में मत ले जाओ, मुझे अधर्म की शक्ति में मत लाओ, और प्रलोभन की शक्ति में मत लाओ, और किसी भी शर्मनाक चीज की शक्ति में मत लाओ। इसलिए हमें परीक्षण के आगे झुकने न दें, हमें वितरित करें, और साथ ही हमें बुराई से बचाने का हिस्सा भी। इसे ग्रीक भाषा में व्यक्त किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसका मतलब दुष्ट है, लेकिन संभवतः यह दुष्ट की बात कर रहा है। उन्होंने इसे मैथ्यू में अन्यत्र कहा है, उन्होंने इसे नए नियम में अन्यत्र भी कहा है। हमें दुष्टों की योजनाओं के आगे झुकने न दें। ईश्वर परीक्षण का उपयोग हमारी भलाई के लिए करता है। दुष्ट इसे हमारी बुराई के लिए एक प्रलोभन के रूप में चाहता है, इसीलिए उसे मैथ्यू 4 और श्लोक 3 में प्रलोभक कहा गया है, साथ ही मैथ्यू 4 और श्लोक 5 में शैतान कहा गया है, और अध्याय 4 और श्लोक 10 में शैतान कहा गया है। यह एक विचार है कि पश्चिम में हम अक्सर उपेक्षा करते हैं, लेकिन कुछ में दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग अलौकिक के बारे में अधिक जागरूक हैं। अलौकिक वास्तव में इसे कहने का एक बेहतर तरीका है, बुराई का अलौकिक और फिर भी व्यक्तिगत आयाम। दुनिया में बुराई के कुछ रूप इतने भयानक हैं कि शैतान के अस्तित्व के बिना उन्हें समझाना मुश्किल है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, 3 आप याचिकाएं और 3 हम याचिकाएं हैं। खैर, प्रार्थना के अंत के बारे में क्या? जैसा कि बाइबल के कई अनुवादों में अक्सर प्रार्थना की जाती है, कम से कम कभी कभी इसका उल्लेख फुटनोट में किया जाता है, या अक्सर उनके चर्चों में प्रार्थना की जाती है, राज्य और शक्ति और महिमा आपकी है। खैर, वह बाइबल भाषा है। मेरा मतलब है, आपके पास भजनों में स्पष्ट रूप से ऐसी भाषा है, लेकिन मैथ्यू की शुरुआती पांडुलिपियों में यह गायब है, शायद मैथ्यू के मूल पाठ में नहीं। मैं यहाँ उस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ जिसे पाठ्य आलोचना कहा जाता है, यदि आपको यह कहीं और नहीं मिला है, हालांकि संभवतः आपने इसे कहीं और सुना होगा। नए नियम के साथ हमारे पास जो कुछ है, वह भूमध्य सागरीय पुरातनता का सर्वोत्तम प्रमाणित कार्य है। हमारे पास इसकी अनेक पांडुलिपियां हैं। सीजर के गैलिक युद्ध के लिए हमारे पास शायद 30 पांडुलिपियां हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यों के लिए हमारे पास प्राचीन दुनिया से कभी कभी 900 साल बाद की केवल एक पांडुलिपि है। भूमध्य सागरीय पुरातनता का दूसरा सबसे प्रमाणित कार्य ओमर का इलियड की 700 से भी कम प्रतियां उपलब्ध हैं। लेकिन मध्य युग में भिक्षुओं के लिए जिस बड़ी चीज की नकल करना उन्हें पसंद था, वह थी बाइबल। तो आपके पास न्यू टेस्टामेंट की बहुत सारी प्रतियां हैं, और इनमें से कुछ प्रतियां बहुत पहले ही चली जाती हैं। मेरा मतलब है, हमारे पास दूसरी सदी की शुरुआत से जॉन के सुसमाचार का एक अंश है। तो हम बात कर रहे हैं शायद एक पीढ़ी की, उस स्थिति में हम नकल की जा रही चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। और कभी कभी इन पांडुलिपियों, इन शुरुआती पांडुलिपियों का पुनः उपयोग किया जाता रहा, यहाँ तक कि कुछ शताब्दियों तक, जब तक कि वे खराब नहीं हो गई। तो आपके पास अन्य पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाई जा रही है, शायद कुछ मूल से भी। लेकिन समय के साथ कभी कभी शास्त्री सोचते थे, ओह, किसी ने इसे छोड़ दिया था, और वे इसे इसमें जोड़ देते थे, यह सोचकर कि यह वहां होना चाहिए था, और उनसे पहले के मुंशी ने गलती की और इसे छोड़ दिया। या कभी कभी कोई मुंशी गलती कर देता है और गलती से कुछ छूट जाता है। मेरा मतलब है, आप हर चीज को हाथ से कॉपी करने का प्रयास करें और देखें कि क्या आपसे कभी कोई गलती होती है। यह बाइबल में ही गलती नहीं है, यह बाइबल की नकल करने में गलती है। खैर, इस मामले में, और इसका एक हिस्सा उस स्थिति के कारण है जो प्रारंभिक चर्च में थी। मेरा मतलब है, इसे कुछ अन्य दस्तावेजों की तरह शाही अदालतों में कॉपी नहीं किया जा रहा था। उत्पीड़न की स्थिति में अक्सर इसकी नकल की जा रही थी। किसी भी मामले में, इस प्रार्थना में राज्य और शक्ति और महिमा आपकी है, यहूदी प्रार्थना के अंत में किसी प्रकार का स्तुतिगान जोड़ने की प्रथा थी। प्रारंभिक ईसाई प्रार्थनाओं में भी यह प्रथा थी। तो स्वाभाविक रूप से जब लोग चर्च में यह प्रार्थना करते थे तो वे कभी कभी ऐसा कुछ जोड़ देते थे। खैर, कुछ शास्त्री उन परंपराओं से थे जहां उन्होंने कुछ इस तरह जोड़ा और वे मैथ्यू में पाठ तक पहुंचे और उन्होंने कहा, ओह, यह वहां नहीं है, किसी ने इसे छोड़ दिया, और इसलिए उन्होंने इसे इसमें जोड़ा और इस तरह यह हमारे पाठ में आया। इसकी प्रार्थना करने में कुछ भी गलत नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं, यह अभी भी बाइबिल है, लेकिन यह वास्तव में मैथ्यू के इस मूल पाठ का हिस्सा नहीं है। संभवतः इसे बहुत पहले ही जोड़ा गया था। प्रथम व्यक्ति बहुवचन, हमें दो, हमें क्षमा करो, हमारा नेतृत्व करो, हमारा उद्धार करो। अधिकांश सार्वजनिक यहूदी प्रार्थनाएं पूरे समुदाय के लिए थीं। पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी प्रार्थना बहुत ही व्यक्तिवादी हैं। ये बुरा नहीं है। बाइबल के कुछ अन्य भागों में भी इस पर जोर दिया गया है। मेरा मतलब है, निश्चित रूप से हमारे दिलों में अब्बा चिल्लाने वाली आत्मा, हमारा भगवान के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता है, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है। हमें मसीह के शरीर के रूप में एक दूसरे के साथ प्रार्थना करने के लिए भी तैयार रहने की आवश्यकता है। अब विशेष रूप से यदि आप उत्पीड़न की स्थितियों में हैं, जहां वे वास्तव में अन्य लोगों के आसपास नहीं रह सकते हैं, लेकिन आदर्श की बात करें तो हमें अन्य विश्वासियों के साथ इस सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। हमें एक साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम मसीह में एक समुदाय हैं। गुप्त उपवास 16 से 18 तक। उपवास अक्सर दुःख या पश्चाताप व्यक्त करता है, कभी कभी कॉरपोरेट पश्चाताप समुदाय के पापों पर दुःख व्यक्त करता है। और ये भी कोई ऐसी बात थी जो दिल की बात होनी चाहिए। योएल 2:13 अपना हृदय फाड़ो, वस्त्र नहीं। यशाया 58 सत्य मांगता है, प्रभु मांगता है। न्याय के लिए काम करें, भूखों को खाना खिलाएं इत्यादि। प्रार्थना और उपवास को अक्सर प्रार्थना के साथ जोड़ा जाता था। प्रारंभिक यहूदी धर्म में इसका मतलब कुछ सन्यासी होना नहीं था, जहां आप सिर्फ अपने आप को बुरा या कुछ और महसूस कराने की कोशिश करते थे। यह भगवान के लिए एक बलिदान था। मेरे जीवन में एक बार जब मुझे कोई गंभीर जरूरत थी तो मैं प्रार्थना करता था और तब तक उपवास करता था जब तक मुझे एहसास नहीं हो जाता था कि मेरे पास प्रार्थना करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मेरे लिए उन सभी के बारे में उपवास करना मैं कभी नहीं खाऊंगा। और इसलिए मैंने अभी एक अनुशासन के रूप में शुरुआत की है। यह कुछ ऐसा था जो मैंने कई वर्षों तक किया। और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं हर हफ्ते सिर्फ एक दिन उपवास करूंगा। और यह किसी विशेष आवश्यकता के लिए उपवास करना नहीं था। यह सिर्फ भगवान के प्रति मेरे दिल की भक्ति थी, भगवान को अपने दिल का स्वेच्छा से बलिदान देना और यह भरोसा करना कि भगवान मेरी प्रार्थना सुनते हैं क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं उपवास कर रहा हूँ या वह कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि वह हैं मेरे पिता। और यह उस दौरान एक अद्भुत भक्ति अनुभव था। लेकिन उपवास ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को त्यागपूर्वक दर्शाने का एक तरीका है। कुछ लोग मधुमेह या कुछ और होने पर ऐसा नहीं कर सकते, और यह समझ में आने योग्य है। ऐसे अन्य तरीके भी हैं जिनसे हम ईश्वर को अपना बलिदान दिखा सकते हैं। लेकिन लोग अपनी त्वचा को साफ करने और मलने के लिए तेल का उपयोग करते हैं, या कुछ संस्कृतियां इसका उपयोग सूखी खोपड़ी को चिकनाई देने के लिए करती हैं। उस समय अधिकांश उपवासों में आत्मअपमान, न धोना, शेविंग करना या संभोग करना शामिल था। लेकिन यीशु कहते हैं, लोगों को पता न चलने दो कि तुम उपवास कर रहे हो। इसे खत्म करने के बाद वह दूसरे अनुभाग में चला जाता है। और यह खंड हमारे भौतिकवाद को चुनौती देता है, और यह वास्तव में हमारे भौतिकवाद को पूरी तरह से चुनौती देता है। आपके पास लुका 12 में ऐसा कुछ है जहां कोई यीशु के पास आता है और कहता है, यीशु मेरे भाई को मेरे साथ विरासत बांट दो। खैर, भाई को विरासत का बंटवारा करना था। मेरा मतलब है वह कानून का मामला था। और रब्बियों, यह उन मुख्य कामों में से एक था जो उन्हें करना चाहिए था। उनसे अपेक्षा की गई थी कि कानून जो कहता है उससे निपटकर कानूनी विवादों का निपटारा करें। यीशु कानूनी विवाद को निपटाने के बजाय यह कहने के बजाय, ठीक है, मैं उस मामले में आपके कानूनी अधिकार की रक्षा करने जा रहा हूँ, वह कहते हैं, भौतिकवादी मत बनो, इन बातों की परवाह मत करो। और शायद वहाँ अतिशयोक्ति का एक तत्व है, लेकिन मुद्दा यह है कि यीशु और राज्य ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हमें संपत्ति के लिए नहीं, उसके लिए जीने की जरूरत है। संपत्ति को इतना महत्व न दें कि उसकी तलाश की जा सके। यीशु हमें यहाँ बताने जा रहे हैं, और वह आगे भी कहने जा रहे हैं, संपत्ति को इतना महत्व न दें कि उनके बारे में चिंता करें। 6:19-24 तक। कुछ लोगों ने धन की प्रशंसा की। दार्शनिक अक्सर इसे तटस्थ या नकारात्मक के रूप में देखते थे। यहूदी धर्म धन को सकारात्मक रूप में देखता है, क्योंकि मेरा मतलब है आप इसका उपयोग सकारात्मक तरीकों से कर सकते हैं। जॉन वेस्ली ने गरीबों को बहुत कुछ देने की बात कही थी और कहा था, जितना कमा सको उतना कमाओ, जितना हो सके उतना दो। उन्होंने यह नहीं कहा कि जितना हो सके उतना खर्च करें ताकि अर्थव्यवस्था को तेल देने में मदद मिल सके, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से जो कर सकते हैं उसके संदर्भ में यह हमेशा सबसे उपयोगी चीज नहीं हो सकती है जो हम कर सकते हैं। कभी कभी हम इसे आर्थिक विकास में निवेश कर सकते हैं। हम इसे अन्य तरीकों से लोगों की मदद करने में निवेश कर सकते हैं। लेकिन धन कमाने में कुछ भी गलत नहीं है। यहूदी धर्म ने इसे सकारात्मक रूप में देखा, लेकिन उन्होंने इसे आध्यात्मिक रूप से खतरनाक भी माना। व्यवस्था विवरण 6 की तरह, जब आप भूमि में प्रवेश करते हैं और आपके पास ये सभी उपहार हैं जो भगवान ने आपको भूमि में दिए हैं, तो भगवान को मत भूलना। या व्यवस्था विवरण 32, जब येशु और ग्रिफिथ ने वास्तव में लात मारी, जब इसराइल समृद्ध हो गया तो वह भगवान को भूल गई। यहूदी ग्रंथों में वर्तमान के खजानों की निरर्थकता बनाम सच्चे शाश्वत खजानों, स्वर्ग के खजानों की बात की गई है। एसेंस इस हद तक आगे बढ़ गए कि उन्होंने निजी संपत्ति का परित्याग कर दिया। यीशु भी समान रूप से कट्टरपंथी हैं, लेकिन एसेंस की तरह नहीं। वह पर्यवेक्षण के लिए कोई परिषद स्थापित नहीं करता है और कहता है, ठीक है, ठीक है, तुम्हें ये सब चीजें छोड़नी होंगी। बल्कि यीशु हमें अपनी संपत्ति की तुलना में दूसरे लोगों की अधिक परवाह करने के लिए बुलाते हैं। यदि हम वास्तव में ऐसा करते हैं, तो हम अपने संसाधनों के साथ जो करते हैं, उस पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वह यह नहीं कह रहे हैं कि संपत्ति बुरी है, बल्कि वह यह कह रहे हैं कि प्राथमिकता लोगों पर होनी चाहिए। 6.19.21 स्वर्गीय खजाने की तरह जीना ही मायने रखता है। अक्सर लोग अपनी सारी बचत घर में या फर्श के नीचे एक मजबूत बक्से में रखते होंगे। परिधान को भी धन का एक रूप माना जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का परिधान है। यह एक संसाधन था जो लोगों के पास था। ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी पर आज्ञाकारिता, विशेष रूप से दान, स्वर्ग में खजाना प्राप्त करता है। यह एक सामान्य यहूदी समझ थी। इसलिए यीशु यहाँ जो कह रहे हैं उससे सैद्धांतिक रूप से लोग असहमत नहीं होंगे। हो सकता है कि वे इस बात से असहमत हों कि यीशु ने इसे कहां तक आगे बढ़ाया, क्योंकि यीशु काफी कट्टरपंथी थे। भौतिकवाद हमें ईश्वर के दृष्टिकोण से अंधा कर देता है। 6:22-23 वह बात करता है, शाब्दिक रूप से कहता है, अपनी आंख को एकाकी रहने दो। और इसका उपयोग अक्सर पुराने नियम में हिब्रू शब्द का सही अनुवाद करने के लिए किया जाता था। लेकिन यह ईश्वर के प्रति एक निष्ठ समर्पण की भी बात करता है। वह एक आंख की तुलना बीमार आंख या बुरी आंख से करता है। यहूदी मुहावरे में अक्सर एक आंख का मतलब उदार आंख या स्वस्थ आंख होता है, और वह इस स्वस्थ आंख की तुलना बुरी नजर पैनेरास से करता है। इसका मतलब ईर्ष्यालु या कंजूस या बीमार हो सकता है। इसलिए लोगों को देखते समय अपनी दृष्टि उदार रखें। इसे कंजूस मत बनने दो, अरे नहीं, मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूं। वह कहते हैं कि आप ईश्वर के प्रेमी और धन के प्रेमी दोनों नहीं हो सकते। मैमोन एक ऐसा तरीका था जिससे यहूदी लोग कभी कभी अरामी भाषा का उपयोग करके धन का मानवीकरण करते थे। यहाँ यह पैसे के लिए एक शब्द है, लेकिन यीशु इसका उपयोग करते हैं और कुछ अन्य लोग इसका उपयोग मानवीकरण के रूप में करते हैं। यह या तो भगवान है या मैमन। आप पैसे की पूजा नहीं कर सकते। आप पैसे के लिए नहीं जी सकते। और पहले वाला शब्द मैं केवल उदार अनुवाद का उपयोग कर सकता था, लेकिन मैंने अनुवाद एकल का उपयोग किया, जो शाब्दिक अर्थ का हिस्सा है, क्योंकि यह एकल बनाम दोहरे को आगे बढ़ाता है। इसलिए जब वह इस बारे में बात करते हैं कि एक नौकर दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, तो आपके पास एक स्वामी होना चाहिए। आप भगवान और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। उस समय कुछ संयुक्त रूप से गुलाम रखे गए थे, लेकिन आमतौर पर यह बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता था। फिर यीशु आगे कहते हैं, संपत्ति को इतना महत्व मत दो कि उसके बारे में चिंता करो। 6:25-34 भगवान बुनियादी बातों का वादा करता है, और जो उदाहरण वह यहाँ देते हैं वे बुनियादी बातें हैं, जैसे भोजन और कपड़े। तो यह बहुत अमीर बनने और बहुत महंगी कारें चलाने वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा है। भगवान बुनियादी बातों का वादा करता है, लेकिन वह बुनियादी बातों का वादा करता है। वह हमें बुनियादी चीजें मुहैया कराना चाहता है। दार्शनिकों और रब्बियों ने अक्सर प्रकृति से सबक लिया, और यीशु ने भी प्रकृति से सबक लिया। मेरा मतलब है, यह राजा सुलेमान के पास जाता है। उनके ज्ञान का एक हिस्सा प्रकृति के बारे में था। तो आज हमारे पास जीव विज्ञान का अनुशासन है। हम जीव विज्ञान से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन हम अक्सर जीव विज्ञान से नैतिक सिद्धांत नहीं लेते हैं। लेकिन प्राचीन लेखक अक्सर भगवान के काम करने के तरीके के बारे में भी सीखते थे, क्योंकि वे अपने आसपास की दुनिया को देखते थे। रब्बियों ने कहा कि भगवान के आदेश के बिना एक भी पक्षी जमीन पर नहीं गिरेगा, और यह वैसा ही विचार हो सकता है जिसका उल्लेख यीशु ने यहाँ किया है। वह हर गौरैया को जानता है, वह हर लिली को जानता है, वह उनकी देखभाल करता है। आप ऐसी चिंता क्यों करते हैं मानो वह आपकी देखभाल नहीं करेगा? तुम अनेक गौरयों से अधिक मूल्यवान हो। लबादे को आवश्यक माना जाता था। निर्गमन 22 में उन्हें हल्के में लिया गया था। यहां तक कि जॉन द बैप्टिस्ट, मेरा मतलब है, उसके पास सिर्फ एक लबादा था, लेकिन उसके पास कुछ था। यीशु ने इसे भी चुनौती दी। वह कहता है, अपने लबादे पर निर्भर मत रहो, परमेश्वर पर निर्भर रहो। वह कौन है जो वस्त्र उपलब्ध कराता है? और वह इसके बारे में बाद में अध्याय 24 में बात करने जा रहा है। आप जानते हैं, यदि आपका जीवन खतरे में है, तो आपको अपना बाहरी वस्त्र पीछे छोड़ना पड़ सकता है, भले ही आपको अपने बाहरी वस्त्र की आवश्यकता हो, लेकिन आपका जीवन अधिक मायने रखता है, और भगवान को आपके जीवन की परवाह है। यीशु कहते हैं, बुतपरस्त भौतिक चीजों की तलाश करते हैं। यहूदी लोग बुतपरस्तों को इतना पसंद नहीं करते थे, अधिकांश यहूदी लोग, विशेषकर यहूदिया और गलील में। और इसलिए यीशु कहते हैं, मूर्ति पूजक भौतिक चीजों की तलाश करते हैं। आप उनके जैसा नहीं बनना चाहते क्या? आप 6:31 और 6:32, वह हमें प्रार्थना करने से नहीं रोक रहा है। मेरा मतलब है, उन्होंने हमें अपनी रोजी रोटी के लिए प्रार्थना करना सिखाया। आप इसे अध्याय 6 और श्लोक 11 में याद कर सकते हैं। लेकिन यह प्राथमिकताओं का मामला है। याद रखें, उन्होंने हमें सबसे पहले प्रार्थना करना सिखाया, आपका नाम पवित्र हो, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो। और इसीलिए वह आगे कहने जा रहा है, पहले राज्य की तलाश करो और ये सभी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। वह कहता है, चिंता मत करो। बुतपरस्त इन चीजों की तलाश करते हैं, लेकिन आपको इन चीजों के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, इन चीजों से भस्म हो जाते हैं। वह कहते हैं, चिंता करने से आपकी लंबी उम्र में एक हाथ भी नहीं जोड़ा जा सकता, जो आम तौर पर लंबाई का एक माप है। संभवतः लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक ग्राफिक तरीका, हालांकि कभी कभी भाषा का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। दरअसल यहूदी लोग पहले ही समझ चुके थे कि यह सिराज की किताब में है, कि चिंता वास्तव में आपकी लंबी उम्र को बढ़ाने के बजाय कम कर सकती है। एक और ऋषि जो यीशु से बाद में बोल रहे थे, लेकिन शायद ऋषियों के बीच एक परिचित परंपरा का जिक्र करते हुए, आज की चिंताएं दिन के लिए पर्याप्त हैं। आपको इसमें कल की चिंताएं जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यीशु कहते हैं, आज आपके पास निपटने के लिए पर्याप्त मुद्दे हैं। बस हर चीज के बारे में चिंताएं बढ़ाना और चिंता करना शुरू न करें। अब चिंता कभी कभी जैव रासायनिक रूप से उत्पन्न होती है। यह हमेशा ऐसी चीज नहीं है जिसकी हम मदद कर सकें। लेकिन चिंता एक ऐसी चीज है जो हम करते हैं। और यीशु कहते हैं, ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करो। परमेश्वर की वफादारी के बारे में सोचो। चिंता करने की बजाय ईश्वर पर भरोसा रखें। यह वर्षों पहले मेरे बढ़ते हुए किनारों में से एक था, अब से भी अधिक। लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे हमें सीखने की जरूरत है। और वह कहता है, ओह, तुम्हें थोड़ा विश्वास है। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर तुम्हारा भरण पोषण करेगा? वह एक यहूदी अभिव्यक्ति थी। मार्क में अक्सर शिष्यों को कम विश्वास था, लेकिन यह आपको अक्सर मैथ्यू के सुसमाचार में मिलता है। तुम्हें थोड़ा विश्वास है। मार्क में कभी कभी वे विश्वासयोग्य थे, लेकिन किसी भी मामले में यीशु आगे कहते हैं, निर्णय मत करो। न्याय करना एक दैवीय विशेषाधिकार माना जाता है, और अन्य यहूदी संत भी थे जो न्याय करने के बारे में समान विश्वास रखते थे। सिराच, हिलेल इत्यादि सभी ने कहा था, दूसरों का मूल्यांकन मत करो। यहां तक कि एक यहूदी कहावत भी है, ठीक उसी तरह जिसका उपयोग यीशु यहां करते हैं, जैसे आप मापते हैं यह आपके लिए भी मापा जाएगा। यीशु कहते हैं कि अपराध बोध को तर्कसंगत बनाकर व्यक्ति स्वयं को अंधा कर देता है। यह एक विचित्र छवि है। यह वैसा ही है जैसे कोई अंध नेत्र सर्जन आपकी आंखों का ऑपरेशन कर रहा हो। तलमूद यहूदी रब्बी परंपराओं के एक समूह का उपयोग करता है। तलमूद का भी ऐसा ही कथन है। यह उन लोगों की शिकायत करता है जो हल्की फुल्की आलोचना से भी नाराज होते हैं। यदि किसी से कहा जाए, अपनी आंख से चिप निकाल लो, तो वह उत्तर देता है, अच्छा, अपनी आंख से किरण निकाल लो। तो हो सकता है कि यीशु यहां एक परिचित अभिव्यक्ति लागू कर रहे हों, लेकिन यह वास्तव में एक विचित्र छवि है। जब आप कुछ प्राचीन ग्रंथों में नेत्र शल्य चिकित्सकों के बारे में पढ़ते हैं कि यदि वे ऑपरेशन करने के प्रयास में आपकी आंख को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनकी आंख खराब हो जाती है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। मुझे नहीं लगता कि मैं उस समय नेत्र सर्जन बनना चाहता था, लेकिन यहां की छवि और भी विचित्र है। यह पेड़ आपकी आंख से चिपक गया है। श्लोक 6 थोड़ा अधिक कठिन है और टिप्पणीकारों को इसमें कठिनाई होती है। यह एक बात है कि एक पृथक कहावत के रूप में इसका क्या अर्थ हो सकता है, लेकिन इस संदर्भ में यह कैसे कार्य करता है। खैर, मैं आपको इस पर अपना सर्वश्रेष्ठ अनुमान दूंगा। यह आवश्यक रूप से सही नहीं है, लेकिन यह सबसे अच्छा है जिसे मैं समझ सकता हूं। मुझे लगता है कि यह एक कहावत है, जैसा कि नीतिवचन 23:08 में है, जहां मैथ्यू 7:06 में वह कहता है, अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको, नहीं तो वे पलटकर तुम्हें फाड़ डालेंगे। नीतिवचन 23:09 मूर्ख के सामने न बोलना, जो तेरे बुद्धि के वचनों का तिरस्कार करेगा। संदर्भ में इसका तात्पर्य संभवतः उन लोगों को सुधारने से है जिन्हें सुधार प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उन्हें ठीक करने का प्रयास करना व्यर्थ है। और आपके पास नीतिवचन 9:08 में भी है, किसी ऐसे व्यक्ति को सुधार देने का विचार जो इसे प्राप्त नहीं करेगा। किसी को भी मैथ्यू 13 की तरह समझदारी से ज्ञान या राज्य का उपहार देना जारी रखना चाहिए, केवल उन लोगों को जो वह जो प्रदान करता है उसे प्राप्त करने के इच्छुक हैं, जैसा कि भगवान करते हैं। यही कारण है कि मैथ्यू 10 में आपने उनसे अपने पैरों की धूल झाड़ने को कहा है। दूसरों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध सच्चाई थोपने का प्रयास न करें। यदि वे सुनने को तैयार नहीं हैं, तो किसी और के पास जाएं। शायद वे बाद में सुनेंगे, आप वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर वे नहीं सुन रहे हैं, तो आप उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अधिक स्पष्ट रूप से अध्याय 7:7-11 में अच्छे उपहारों की गारंटी दी गई है। ईश्वर धर्मी लोगों को कुछ भी प्रदान कर सकता है। 7:7-10। अब यह प्रार्थना के लिए एक असाधारण वादा है। यह एलियाह की तरह है जिसने चीजों के लिए प्रार्थना की और वे घटित हुई, लेकिन यहां यह सभी विश्वासियों पर लागू होता है। प्राचीन यहूदी धर्म में आमतौर पर जब वे इस तरह की किसी चीज के बारे में बात करते थे, तो इसका श्रेय केवल बहुत विशेष पवित्र लोगों को दिया जाता था। लेकिन यीशु चाहता है कि हम सभी शिष्य यह पहचाने कि ईश्वर हमारा पिता है और हम सभी पिता से प्रार्थना कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, वह यहाँ प्रार्थनाओं के लिए जिस प्रकार के उदाहरण देता है, आप जानते हैं, यदि आप रोटी मांगते हैं, और ल्यूक भी, यदि आप अंडा मांगते हैं, तो ये बुनियादी चीजें हैं। उन्होंने यहाँ रोटी और मछली का उल्लेख किया है। अधिकांश पिता नियमित रूप से इससे अधिक केवल बुनियादी बातें ही प्रदान नहीं कर पाते। हालांकि परमेश्वर की पिता जैसी देखभाल यह आश्वासन है कि वह उत्तर देगा। अध्याय 7 और पद 11। यीशु ने यहाँ उस बात का उपयोग किया है जिसे रब्बी उमर की पुकार कहते हैं। यह कितना अधिक तर्क है। यीशु कहते हैं, यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छे उपहार देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, जो स्पष्टतः बुरा नहीं है, अपने मांगने वालों को अच्छे उपहार क्यों न देगा। और ल्यूक ने एक विशेष रूप से अच्छे उपहार, पवित्र आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया। मैथ्यू अधिक सामान्यतः बोल रहा है। अध्याय 7 और श्लोक 12। दूसरों के साथ वही करें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। खैर, यह प्राचीन नैतिकता का एक व्यापक सिद्धांत था, यहाँ तक कि उन संस्कृतियों में भी जो चीन में नैतिकता के संदर्भ में सीधे तौर पर संबंधित नहीं थीं। मुझे कई कन्फ्यूशियस कथन मिले जो बाइबल की नैतिकता से काफी मिलते जुलते हैं, हालांकि लिंग के मामले में शायद कुछ समस्याएं थीं। लेकिन कन्फ्यूशियस के कई कथन अर्थपूर्ण थे। लेकिन यह प्राचीन नैतिकता का एक व्यापक सिद्धांत है कि दूसरों के साथ वही करें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। इसका सकारात्मक रूप यूनानी साहित्य में अनेक बार दिखाई देता है। यह हेरोडोटस, सुकरात, होमर और सेनेका में दिखाई देता है। नकारात्मक रूप व्यापक रूप से अक्सर यहूदी साहित्य, टोबिट, फिलो और हिलेल से संबंधित एक कहावत में दिखाई देता है। इसके अलावा हेलेनिस्टिक यहूदी साहित्य में कभी कभी इसके दोनों रूप मिलते हैं, जैसे अरिस्टियास के पत्र में। यीशु कहते हैं, दूसरों के साथ वही करो जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो, और कहते हैं कि यही पूरा कानून और भविष्यवक्ता है। वह मैथ्यू 22 में ईश्वर से प्रेम करने और अपने पड़ोसी से प्रेम करने के बारे में भी कहते हैं। ये ऐसे तरीके थे जो सारांशित करेंगे। यदि आप अपने पड़ोसी के साथ वही करते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए, तो ठीक है, आप कानून के सिद्धांतों को पूरा करने जा रहे हैं। और यह वास्तव में कुछ ऐसा था जिसका श्रेय हिलेल को भी दिया जाता है। हिलेल यीशु से पहले जीवित थे। यह वास्तव में यीशु के कुछ सदियों बाद दर्ज किया गया है। लेकिन चूंकि रब्बियों ने यीशु को उद्धृत न करने के अपने रास्ते से हट गए थे, शायद यह बात पुरानी हो गई है। यह संभवतः अधिक परिचित विचार है। तो कहानी इस प्रकार है, एक गैर यहूदी व्यक्ति शम्मई के पास आया था जो हिलेल जितना मिलनसार नहीं था। शम्मई यीशु के मंत्रालय से पहले की पीढ़ी से एक अलग रब्बी था और शम्मई एक बढ़ी था। और वह शम्मई के पास आया और उसने कहा, यदि तुम मुझे एक पैर पर खड़े होने के समय में पूरी तोरा सिखा दो तो मैं यहूदी धर्म अपना लूंगा। खैर, रब्बी शम्मई ने इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया। उसने अपनी बढ़ी की छड़ी उठाई और उस आदमी को पीट कर भगा दिया। खैर, फिर वह आदमी हिलेल के पास आता है और कहता है, अगर आप मुझे एक पैर पर खड़े होकर पूरा टोरा सिखा सकते हैं तो मैं यहूदी धर्म अपना लूंगा। तो हिलेल कहते हैं, ठीक है, अपने पड़ोसी के साथ वह मत करो जो तुम नहीं चाहते कि वे तुम्हारे साथ करें। और यही संपूर्ण कानून है, और वह व्यक्ति यहूदी धर्म में परिवर्तित हो गया। यीशु मैथ्यू 7 में वर्तमान दावों बनाम भविष्य के फैसले 7.13-27 से भी निपटते हैं। रास्ता यीशु के सुनने वालों की सोच से कहीं ज्यादा संकरा है। दो तरीकों की छवि प्राचीन स्रोतों में आम थी और यहूदी धर्म में बहुत आम थी। इसका एक उदाहरण योचनान बेन ज़ेकाई है। वह पहली शताब्दी के प्रमुख रब्बी विद्वानों में से एक थे। जब वह अपनी मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने कहा, मुझे अपने सामने दो रास्ते नजर आते हैं और मैं डर गया हूं क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं किस रास्ते पर जा रहा हूं। यीशु के अधिकांश समकालीन लोग ईश्वर का आदर करते थे। वे टोरा का सम्मान करते थे। यह उनकी संस्कृति का हिस्सा था। और फिर भी कुछ ने कहा कि अधिकांश खो गए थे। 4 एज़रा 7-8 और मृत सागर स्क्रॉल सहित कुछ अन्य सांप्रदायिक दृष्टिकोणों ने माना कि अधिकांश लोग खो गए थे। और यीशु भी यही बात कहते हैं। इसका उद्देश्य हमारा ध्यान आकर्षित करना है। अधिकांश लोग खो गए हैं, जिनमें कई लोग भी शामिल हैं जिन्होंने सोचा था कि वे टोरा को अच्छी तरह से रख रहे थे और भगवान का काफी सम्मान कर रहे थे। श्लोक 15-23। सच्चे पैगंबरों को यीशु की आज्ञा माननी चाहिए। कोई भी कह सकता है कि वे भगवान के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे जीना होगा जैसे आप भगवान की सेवा कर रहे हों। यरूशलेम के पतन से पहले उसके भीतर मुक्ति के भविष्यवक्ता थे, और जब तक मंदिर न जलाया गया तब तक वे मंदिर में यही कहते रहे कि परमेश्वर मंदिर की रक्षा करेगा। भगवान मंदिर की रक्षा करने जा रहे हैं। कुछ लोग सच बोल रहे थे। उनमें से एक यहोशू बेन और अनन्याह थे जो कह रहे थे कि मंदिर नष्ट होने वाला है। और यीशु ने यह भी कहा कि मंदिर नष्ट होने वाला है। लेकिन ऐसे बहुत से भविष्यवक्ता थे जो लोगों को बस वही बता रहे थे जो वे सुनना चाहते थे और जो भविष्यवक्ता स्वयं चाहते थे जैसे कि वह प्रभु का वचन हो। यीशु कहते हैं, यहाँ बताया गया है कि आप भविष्यवक्ताओं का परीक्षण कैसे करेंगे। यहाँ बताया गया है कि आप उन्हें कैसे जानेंगे। आप उन्हें उनके फलों से पहचानेंगे, उनके उपहारों से नहीं। भगवान को उनके उपहारों के लिए धन्यवाद। मैथ्यू के श्रोता, ये वे लोग थे जो भविष्यवाणी में विश्वास करते थे। वे भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करते थे। मेरा मतलब है, यीशु एक भविष्यवक्ता थे। लेकिन भविष्यवक्ताओं का परीक्षण करना होगा। एक और प्रारंभिक ईसाई कार्य है जिसे डिडाचे कहा जाता है, जो बहुत प्रारंभिक है, शायद 2री शताब्दी की शुरुआत में। कुछ लोग इसे पहले भी डेट कर चुके हैं। लेकिन डिडाचे इस बारे में बात करता है कि जब भविष्यवक्ता आपके पास आए तो उन्हें परखें। यदि वे पैसे के लिए इसमें हैं तो वे झूठे भविष्यवक्ता हैं। इसलिए चर्च के अंदर इन झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण कुछ शिष्यों की जान चली जाएगी। पद 15। वह इसे भेड़ के भेष में भेड़ियों के रूप में बोलता है। मेमनों और भेड़ियों की दुश्मनी लौकिक थी और भेष बदलकर आने वाले शिकारी भी परिचित थे। ईसप की दंतकथाओं में आपके पास भेड़ की वेशभूषा में भेड़िया है। तो मुद्दा यह है कि वे खतरनाक हैं। वे परमेश्वर के लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे परमेश्वर के लिए नहीं बोल रहे हैं और वे परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे हैं। फैसले का दिन। न्याय के दिन भगवान दिलों को उजागर करेंगे। जब वे कहते हैं, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं की और तेरे नाम से अद्भुत काम नहीं किए और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला। कभी कभी यह वास्तव में वास्तविक हो सकता है कि ईश्वर लोगों के माध्यम से कार्य कर सकता है। न्यायाधीशों की पुस्तक के बारे में सोचें, जहां सैमसन के पाप करने के बाद भी परमेश्वर उसके माध्यम से कार्य कर रहा था। आखिरकार इसने उसे पकड़ लिया। लेकिन कुछ समय ऐसा था जब वह अभी भी पाप कर रहा था और यह उसके उपहार और शक्ति को खोने से पहले हो रहा था, जो उसे पश्चाताप के बाद वापस मिल गया था। लेकिन बहुत ऊंची कीमत पर। और आप राजा शाऊल के बारे में सोच सकते हैं, जिसका मूल रूप से परमेश्वर की आत्मा द्वारा अभिषेक किया गया था। वह भविष्यवाणी कर रहा है। खैर, बाद में अध्याय 16 में प्रभु की आत्मा उसे छोड़ देती है और वह जो कुछ भी है उसके द्वारा भविष्यवाणी कर रहा है, चाहे वह एक दुष्ट आत्मा हो या न्याय की आत्मा हो। मुझे लगता है कि यह एक दुष्ट आत्मा है, लेकिन मेरे अधिकांश पुराने नियम के सहकर्मी मुझसे सहमत नहीं हैं। लेकिन किसी भी मामले में, और फिर बाद में वह एक ऐसे स्थान पर आता है जहां प्रभु की आत्मा इतनी मजबूत है, वह एक शमूएल 19 में प्रभु की आत्मा से भविष्यवाणी करना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि वह धर्मात्मा है, बल्कि इसलिए कि वहां बहुत अधिक भक्ति है, इसलिए उस स्थान पर आत्मा की अधिकांश शक्ति है। कुछ लोग अन्य लोगों की प्रार्थनाओं के कारण या क्योंकि वे ऐसी जगह पर हैं जहां भगवान लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए भगवान के लिए काम करने में सक्षम हैं। वे जो कर रहे हैं उससे हमें फूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों के दिलों को नहीं जानते। पॉल का कहना है कि 1 कुरिन्थियों 4 में दिन घोषित किया जाएगा और हम नहीं जानते। कभी कभी कोई व्यक्ति सटीक भविष्यवाणी भी कर सकता है और वह वास्तव में सही तरीके से नहीं जी रहा होता है। तो वह कहता है, तुमने यह तुमसे कहा था, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। खैर, यह अस्वीकृति का एक कानूनी रूप है। यहां कुछ और दिलचस्प है। वे न्याय के दिन यीशु को चिल्ला रहे हैं, हे प्रभु, हे प्रभु। न्याय के दिन यीशु न्यायाधीश हैं। अब कुछ यहूदी ग्रंथों में इसे ईश्वर के अधीनस्थ पर लागू किया जा सकता है, लेकिन आम तौर पर यहूदी ग्रंथों में फैसले के दिन भगवान को न्यायाधीश के रूप में चित्रित किया गया था। अंत में 24 से 27 में यीशु ने अपने शब्दों की तुलना टोरा से करते हुए इस उपदेश को समाप्त किया। न्याय के दिन यीशु का न्याय किया जाता है और लोगों का न्याय इस आधार पर किया जाएगा कि उन्होंने उसकी शिक्षा पर कैसे अमल किया। एक ऐसा ही टैनेटिक दृष्टांत है। जब मैं टैनेटिक कहता हूं तो यह रब्बी साहित्य के पहले स्तर से एक प्रारंभिक रब्बी दृष्टांत है। एक समान दृष्टांत जहां यदि आप चट्टान पर निर्माण करते हैं तो आप संरक्षित रहेंगे, यदि आप रेत पर निर्माण करते हैं तो आप न्याय में बह जाएंगे। लेकिन उस दृष्टांत में चट्टान टोरा को संदर्भित करती है, परंतु यीशु कहते हैं, जो कोई मेरे वचनों पर दृढ़ हो। और इसलिए वह टोरा के बारे में इस दृष्टांत को ले रहा है और इसे अपने शब्दों में लागू कर रहा है। यीशु की शिक्षा टोरा के समान स्तर पर है। यह परमेश्वर का वचन है। तूफान अंतिम निर्णय को संदर्भित कर सकता है, लेकिन दैनिक जीवन में भी कभी कभी हम इन चीजों से प्रभावित हो सकते हैं। यीशु श्लोक 28 और 29 में सुनते हैं, उनके अधिकार को पहचाने। जब यीशु ने समाप्त किया और इसी प्रकार मैथ्यू के सभी 5 प्रमुख प्रवचन खंड समाप्त हुए। जब यीशु ने ये बातें समाप्त की तो लोगों ने उसके अधिकार को पहचान लिया। शास्त्री आमतौर पर पहले के शास्त्रियों का हवाला देते हैं। यीशु किसी और पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने कहा, तुमने यह कहते हुए सुना है, एक आदमी, मैं तुमसे कहता हूं, लगभग प्रभु इस प्रकार कहते हैं। वह अधिकार के साथ पढ़ाते हैं। अब वह भाषा पहले से ही मार्क 1:22 में है। मार्क 1:27 अधिकार के साथ एक नई शिक्षा की बात करता है। मैथ्यू ने इसे छोड़ दिया क्योंकि वह टोरा के साथ निरंतरता पर जोर देना चाहता है। लेकिन हालांकि यीशु टोरा की व्याख्या कर रहे हैं, यीशु भी अन्य शिक्षकों की तुलना में अधिक अधिकार के साथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु वह है जो वास्तव में परमेश्वर के वचन देने के योग्य है, न कि केवल उन्हें समझाने का प्रयास करने का। मैथ्यू अध्याय 8 और 9 में हमारे पास यीशु के चमत्कारों के उदाहरण हैं। 10 निर्दिष्ट चमत्कार हैं। उनमें से 2 एक कहानी में एक साथ दिखाई देते हैं। आराधनालय के नेता की बेटी और रक्त प्रवाह वाली महिला। तो आपके पास 10 निर्दिष्ट चमत्कार हैं, जिनके बारे में कुछ विद्वानों का मानना है कि वे मूसा की 10 विपत्तियों को उत्पन्न करते हैं, हालांकि वे उनसे बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। जॉन के सुसमाचार में आपके पास 7 संकेत हैं। उनमें से पहला है पानी को खून में नहीं बल्कि शराब में बदलना, और उनमें से अंतिम पहलौठे की मृत्यु नहीं है बल्कि लाजर का पुनरुत्थान है। कम से कम पहले और आखिरी के साथ जॉन में थोड़ा सा पत्राचार। लेकिन 10 निर्दिष्ट चमत्कार, लेकिन वास्तव में 9 चमत्कार कहानियां। उन्हें 3 शिष्यत्व वर्गों में बांटा गया है। तो आपके पास 3 चमत्कारों का एक सेट है, शिक्षण और शिष्यत्व 3 और चमत्कारों का एक सेट, शिक्षण और शिष्यत्व 3 और चमत्कारों का एक सेट, शिक्षण और शिष्यत्व। यीशु के चमत्कारों से शिक्षा, याद रखें, मार्क के 30% से अधिक सुसमाचार में चमत्कार शामिल हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक का 5वां भाग चमत्कारों से संबंधित है। मैथ्यू के अधिकांश, हालांकि मैथ्यू के पास मार्क की तुलना में बड़े शिक्षण ब्लॉक हैं। यह उपेक्षा करने योग्य बहुत अधिक सामग्री है। और फिर भी कम से कम पश्चिम में लोग कभी कभी इनकी उपेक्षा करते हैं, या वे केवल उन्हें आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करते हैं। मैथ्यू अध्याय 8 और 9 के संदर्भ में चमत्कारिक कहानियों के पहले और दूसरे सेट के बीच हम लोगों पर यीशु के अधिकार के बारे में सीखते हैं। यीशु को बीमारी, तूफान और आत्माओं पर अधिकार है। तो क्यों न हम स्वयं को उसके अधिकार में समर्पित कर दें? मैथ्यू अध्याय 8 और 9, अध्याय 10 के बाद का अध्याय, यीशु ने परमेश्वर के शासन का प्रचार करने और परमेश्वर के शासन को प्रदर्शित करने के लिए अपनी फसल में मजदूरों को भेजा, उसी तरह जैसे यीशु इस सुसमाचार में कर रहे हैं। भगवान के शासन का प्रदर्शन करना, बीमारों को ठीक करना, मृतकों को जीवित करना, कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को शुद्ध करना, राक्षसों को बाहर निकालना इत्यादि के द्वारा भगवान के अधिकार का प्रदर्शन करना। इसलिए यीशु इसे अपने शिष्यों के लिए एक उदाहरण के रूप में लागू करते हैं। खैर, बुनियादी व्याख्या शास्त्र या बुनियादी व्याख्यात्मक प्रक्रिया सच्ची कहानियों का रूपक नहीं बनाती। इन्हें सिर्फ प्रतीकों में मत बदलिए। चमत्कारी कहानियों का आध्यात्मिक पुनर्स्थापन पर प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक पुनर्स्थापना के लिए उनके बहुत सारे निहितार्थ हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश स्पष्ट रूप से शारीरिक बहाली की बात करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया के अधिकांश ईसाई आम तौर पर इन चमत्कारी कहानियों को केवल प्रतीकों के रूप में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वे उन्हें इस रूप में पढ़ते हैं कि यह वही है जो भगवान कर रहे थे, और प्राचीन काल में इन्हें सामान्यतः इसी प्रकार पढ़ा जाता था। मेरा मतलब है, यदि आप बुतपरस्त मंडलियों के बारे में सोचते हैं, यदि आप एस्क्लेपियस के मंदिर में गए और उसकी दीवार पर एस्क्लेपियस द्वारा किए गए विभिन्न चमत्कारों की गवाही है, तो दीवार पर उन चमत्कारों का क्या मतलब था? ताकि एस्क्लेपियस के मंदिर में आने वाला कोई व्यक्ति कहे, आहा, एस्क्लेपियस मुझे भी चमत्कार दे सकता है। जब हम यीशु के बारे में ये कहानियां पढ़ते हैं, तो वे हमें उस प्रभु के बारे में बता रहे हैं जो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी हमारी परवाह करता है। अब फिर राज्य अभी तक नहीं है। अब हमें सभी भौतिक आशीर्वाद नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उपचार के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, खासकर लोगों के साथ सुसमाचार साझा करने के दौरान। जब मैं एक बहुत ही युवा ईसाई के रूप में प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ रहा था, तब मैंने इसे जल्दी ही देखना शुरू कर दिया था। मैंने देखा कि यह सुसमाचार की ओर ध्यान आकर्षित करने का मुख्य तरीका था। सार्वजनिक बहस मंच थे, लेकिन मुख्य विधि आप अधिनियमों की पुस्तक को देखें। भगवान ने संकेत और चमत्कार किए और लोगों का ध्यान सुसमाचार की ओर आकर्षित किया। तो मैं कुछ अपार्टमेंट परिसरों में काम कर रहा था और आप जानते हैं वहां एक व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ था। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। दूसरे व्यक्ति में कुछ गलती थी। इस मामले में यह उसका घुटना था। उसने कहा, ओह क्रेग, डॉक्टर मेरे घुटने के लिए कुछ नहीं कर सकते, यह बहुत बुरा है। इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या मैं इसके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। उसने कहा, जरूर। और कुछ दिन बाद वह वापस आ गई। उसने कहा, क्रेग तुम महान हो, जब से आपने मेरे घुटने के लिए प्रार्थना की है यह बेहतर हो गया है। अब मुझे आपसे अपने फेफड़ों के लिए प्रार्थना करवाने की जरूरत है। मुझे खून वाली खांसी हो रही है और मेरे डॉक्टर को लगता है कि मुझे फेफड़ों का कैंसर है। तो मैंने कहा, ठीक है, अपने दोपहर के भोजन के अवकाश पर मैं आऊंगा और आपके फेफड़ों के लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन आप जानते हैं, आपको वास्तव में धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, यह आपके फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, मेरा डॉक्टर भी यही कहता है। लेकिन किसी भी स्थिति में अपने दोपहर के भोजन के अवकाश पर मैं वहां गया और मैंने कहा, ठीक है, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि भगवान आपको ठीक कर देंगे। लेकिन चाहे भगवान आपको ठीक करें या नहीं, एक दिन आपकी मृत्यु निश्चित है और आपको उससे मिलने के लिए तैयार रहना होगा। उसने मेरे साथ ईसा मसीह को अपने भगवान और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की और फिर मैंने उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना की और वह ठीक हो गई। उसे अब खांसी के साथ खून नहीं आया। डॉक्टर ने कहा, ओह तुम्हें फेफड़ों का कैंसर तो नहीं है। और वह बुढ़ापे तक जीवित रही। मैं कहता था कि वह पहले से ही बूढ़ी थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है मैं बूढ़ी की परिभाषा बदल रहा हूं। वैसे भी जैसे ही हम यहां इन उदाहरणों को देखते हैं, ये ऐसे उदाहरण हैं जो हमें भगवान पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। वह हमेशा वह सब कुछ नहीं करता जो हम पूछते हैं, लेकिन वह हमें सुनता है, वह हमसे प्यार करता है और वह प्रार्थना का जवाब देता है। इन उदाहरणों में से एक है एक कोढ़ी को शुद्ध करने की यीशु की इच्छा, अध्याय 8 पद 1 से 4 तक। यह आदमी एक हताश स्थिति में है, वह सामाजिक रूप से हाशिए पर है, वह कोढ़ी है। उसके लिए इसके भौतिक प्रभाव तो हैं ही, लेकिन इसके सामाजिक प्रभाव भी हैं। लैव्य व्यवस्था 13, उसे चिल्लाना चाहिए, अशुद्ध अशुद्ध, ताकि कोई उसे न छुए और धार्मिक अशुद्धता का शिकार न हो जाए। वह व्यक्ति उसे ठीक करने की यीशु की क्षमता पर पूरा भरोसा व्यक्त करता है। वह कहता है, हे प्रभु, यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। वह यीशु की शक्ति को पहचानता है, लेकिन उसमें विनम्रता भी है। वह मानता है कि चुनाव यीशु का है। यह विश्वास की कमी नहीं है, इससे भी अधिक यह विश्वास की कमी थी जब दानियल के 3 दोस्तों ने कहा, हे राजा, भगवान हमें बचाने में सक्षम है, लेकिन अगर वह नहीं भी करता है तो भी हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। छवि या यहोशू की पुस्तक में जब कालेब कहता है, ठीक है, यह वह भूमि है जिसे मुझे लेना है और यदि ईश्वर मेरे साथ है तो मैं इसे ले लूंगा। उसे उम्मीद थी कि ईश्वर उसके साथ है, लेकिन उसने ईश्वर की संप्रभुता को भी पहचाना। वह ईश्वर पर अनुमान नहीं लगा रहा था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यह प्रार्थना करनी होती है। जब वे यीशु के पास आए तो अधिकांश लोगों ने ऐसा नहीं कहा। और एक चीज जो हमें नहीं करनी चाहिए वह यह है कि इसे केवल पुलिस आउट के रूप में उपयोग करें। मुझे याद है कि एक बार मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रार्थना कर रहा था जो उपचार के लिए बेताब था, और हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि हर कोई ठीक हो जाएगा, लेकिन हम प्रार्थना में उनके साथ खड़े हो सकते हैं। हम वफादार हो सकते हैं और इसकी परवाह कर सकते हैं, क्योंकि यह कुछ ऐसा है, मेरा मतलब है, यह उसके लिए जीवन और मृत्यु है। और किसी और ने प्रार्थना की और वह वास्तव में इसमें शामिल हो रहा था, वह व्यक्ति जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि यह उसके लिए बहुत मायने रखता था। उनका जीवन खतरे में था। और किसी और ने कहा, ठीक है भगवान, कृपया उसे ठीक कर दें अगर यह आपकी इच्छा है, और यह बिल्कुल ऐसे ही लापरवाही भरे तरीके से कहा। हम शायद इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि ईश्वर हमेशा ऐसा करेगा, लेकिन हम प्रार्थना में अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़े हो सकते हैं और उनकी परवाह कर सकते हैं, क्योंकि यह उनके दिल में बहुत गहरी बात है। और जैसा कि हम जानते हैं, अक्सर भगवान चंगा करते हैं, हालांकि हमेशा नहीं, क्योंकि अगर भगवान हमेशा चंगा करते तो पहली सदी के सभी प्रेरित अभी भी जीवित होते। मेरा मतलब है, पॉल ने अपना सिर काट लिया, बढ़िया है, दूसरा सिर उगा लेता है। हम सभी मानते हैं कि यह इस तरह से काम नहीं करता है, लेकिन हम यीशु के चरित्र को भी देखते हैं। मैं तैयार हूं, मैं चाहता हूं कि तुम ठीक हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। और यीशु अछूत को छूते हैं। यह कोढ़ी अशुद्ध था। लेव्य व्यवस्था 13 के अनुसार उसे छूने से यीशु अशुद्ध हो जाता है, लेकिन यीशु अछूत को छूते हैं, उसकी अशुद्धता को अपनाते हैं। और क्या यीशु ने हमारे लिए यही नहीं किया है? क्रूस पर भी यीशु ने हमारे पापों को स्वीकार किया, स्वयं पाप नहीं किया, परंतु हमारे पाप को अपना लिया ताकि हम स्वतंत्र हो सकें। उसी तरह वह इन लोगों को साफ करने के लिए, उनकी अशुद्धता को अपनाने के लिए तैयार है। उसने हमें संपूर्ण बनाने के लिए हमारी टूटन को अपनाया है। साथ ही वह अपना सम्मान नहीं चाहता। एक अर्थ में एक मसीहाई रहस्य है, जिसके बारे में हम एक अलग बिंदु पर बात कर सकते हैं। लेकिन यीशु नहीं चाहते कि हर कोई जाने कि वह मसीहा है। उसे पहले से ही भीड़ नियंत्रण की समस्या है। बहुत सारी भीड़ उस पर दबाव डाल रही है। उन्हें शिष्यों के साथ समय बिताने की जरूरत है। तो वह कहते हैं, लोगों को यह मत बताओ कि मैंने क्या किया है, लेकिन हमें मूसा के कानून का सम्मान करने की जरूरत है। इसी प्रकार पद 4 में भी, सुनिश्चित करें कि आप जाएं और गवाही के लिए स्वयं को याजक के पास दिखाएं, जैसा कि मूसा का कानून कहता है। कभी कभी जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं, तो मैं कहता हूं, अगर भगवान आपको ठीक करते हैं तो उन्हें यह मत बताएं कि किसने आपके लिए प्रार्थना की, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि ईश्वर तुम्हें ठीक करता है। यदि मैं तुम्हारे लिए यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं, तो यह यीशु का नाम है जिसने तुम्हें ठीक किया है, और आप जा सकते हैं और गवाही दे सकते हैं कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है, क्योंकि वह वास्तव में वही है जो आपको ठीक करता है। यहां यीशु द्वारा उपचार करने, आत्माओं को बाहर निकालने इत्यादि के कई अन्य उदाहरण हैं। जैसे ही हम अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे, हम उन पर भी गौर करेंगे। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 9 मैथ्यू 7 से 8 है।